अगला बाब देखेंगे। अल हालातु लती ला यक्रहु फीहा सौम, वो उमूर जिनसे रोजा मकरूह नहीं होता। कौन से वाले? पहली बात, भूल चूक से खा पी लेना रोजे को तोड़ता है ना मकरूह करता है, यानी नहीं टूटता। दलील, अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, नबी अकरम ने फरमाया, जब कोई भूल कर खा पी ले तो अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि इसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। इसे बुखारी ने रिवायत किया। क्या पता चला, भूल के खाया तो रोजा पूरा करे, लेकिन अब ये नहीं कि याद आ गया तो भी खाते रहे। हैं, वो कहते ना कि पहले भूले थे अब भोले बन गए। अच्छा, मुझे ये बात पढ़ते ही अपना एक बड़ा, यानी एक बड़ा खूबसूरत तजुर्बा याद आता है। बहुत पहले की बात है, मैं जब पढ़ती थी कॉलेज में तो मैं साइंस स्टूडेंट थी, और ये तो अल्लाह का कोई फैसला था कि मैं इस वक्त कुरान पढ़ा रही हूँ, वरना मुझे डॉक्टर बनना था। तो गर्मियाँ थी बहुत, मुझे याद है जून जुलाई के रोज़े होते थे। हमारा प्रैक्टिकल था उस दिन केमिस्ट्री का, और आपको पता है कि केमिस्ट्री में सब एसिड्स, और हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक यानी एक्सपीरियंस ऐसे करते थे, लैब लेबॉर्ट्री में कई घंटे का एक्सपीरियंस था, कहीं आग जलाते थे, कहीं कुछ क्या कुछ होता था। तो खैर, मेरा रोज़ा था, रोज़ा ही रखना था मैंने। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ मैं बीच में वार्डन्स फिर रही होती हैं ना पानी पिलाने के लिए, हालांकि रमज़ान थे, लेकिन पता नहीं वो क्यों फिरती होंगी। वो फिरी, मैंने एक दफ़ा पानी पिया, आराम से पिया, दूसरी दफ़ा पिया, पूरे 3 घंटे मैंने कई बार पानी पिया। और जब आखिरी दफ़ा पीने लगी, जब वक्त पूरा हो गया, फिर ख्याल आया कि मेरा तो रोज़ा था, तो फिर मैंने कहा ये मुझे अल्लाह ने पिलाया। तो अगर मैं खुद ही छोड़ देती कि नहीं नहीं मेरा रोज़ा है और मैं रोज नहीं रखती, बड़ा मुश्किल है आज का दिन, बड़ा प्रैक्टिकल है, तो फिर मुझे ये बोनस नहीं मिलता ना। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन जूं ही याद आ जाए फिर छोड़ दें, फिर दोबारा नहीं आप उसको कर सकते हैं। और ऐसे बातों पर इंजॉय करना चाहिए, मैं को हाय मकरू है, हाय मेरा रोज़ा ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, नहीं, मैं तो खुश हुई मेरे अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा किया, और अल्लाह ताला फिर भी ऐसा कीजिए, मैं तो खुशी से ऐसे कामों पर तैयार हूँ। तो आप जैसा अल्लाह ताला से गुमान करेंगे, वो आपके साथ वैसा ही मामला इंशा अल्लाह ताला करेंगे। मिसवाक करने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। दलील, आमिर बिन रबिया से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में इतनी मरतबा मिसवाक करते देखा कि गिन नहीं सकता। इसे बुखारी ने रिवायत किया। क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट होता है ना इसमें भी, तो रोज़ा नहीं टूटता जी। टूथपेस्ट का मसला जो है उसका, देखिए कोई चीज़ आप अंदर ना निकले, पहली चीज़ है, सिर्फ मुंह के अंदर टेस्ट जाने से रोज़ा बराह रास्त नहीं टूटता। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि उस टूथपेस्ट उसके गले में चली जाती है और हलक में उतरता है उसका टेस्ट, तो अवॉइड करना चाहिए। आप कहते हैं नहीं, फिर भी बात आती है मुंह में, बड़ा आसान सा तरीका इसका है, पहले से जिस ब्रश के साथ आप पेस्ट लगा के करते हैं ना, उसको पानी से गीला करके कर लें, हल्की सी खुशबू फिर भी होती है। मिसवाक है उसके ऊपर आप हल्का सा लगा लें, पूरी भर के मुँह भर के ना लगाएं, ठीक है। इसी से फिर यानी और भी कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, यदि अंदर अगर कुछ नहीं जा रहा आपके तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। गर्मी की शिद्दत से रोज़ेदार सर में पानी बहा सकता है, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता। दलील, हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक सहाबी ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप रोज़े में गर्मी या प्यास की वजह से सर पर पानी बहा रहे थे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। तब सर पे भी जा रहा है, अगर कुल्ली भी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह रोज़ा इससे नहीं टूटता। क्योंकि जब बंदा बहुत ज़्यादा अकल परस्त हो जाता है, फिर वो कहता है नहीं देखो मेरी तो स्किन में पोर्स भी हैं, अब इन पोर से पानी अंदर जाएगा, फिर मेरे सर की खाल जो स्कल उसके अंदर भी पोर्स हैं, तो अंदर कुछ भी गया तो फिर रोज़ा टूटता है। बस लोग कहते हैं कुछ भी अंदर जाए तो टूटता है, फिर तो आप सांस लेंगे तो भी रोज़ा टूटा, ऑक्सीजन तो अंदर जाती है ना। इस तरह की मतलब शिद्दत नहीं बरतनी चाहिए। इसी पे बात कर लेती हूँ क्योंकि आगे आ रही है, यानी जैसे ये बात कर रहे थे ना हम कि रोज़े के मिसवाक और टेस्ट की बात है, इसी पे लिपस्टिक का मसला भी समझ लें, क्योंकि अलग से करेंगे तो फिर आप इसके साथ नहीं नोट कर पाएंगे। लिपस्टिक का क्या मसला है, यानी लिपस्टिक का तो मसला छोड़े, मेरे साथ वाक्या हुआ, इंसिडेंट कह लें बल्कि इसको आप, कि एक दर्स में थी मैं, तो रमज़ान की बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि लिपस्टिक लगाने से रोज़ा टूट जाता है, तो मैंने कहा कि नहीं टूटता। तो एक औरत ही कहेंगी लेकिन उसके लिए तो मिरर देखना पड़ता है ना, है, मैंने कहा फिर, तो कहती वो शीशा देखने से भी तो रोज़ा टूट जाता है। यानी अब ये हिसाब लगा लें कि ये हमारी मतलब वो कौम है कि जिसको इल्म से कोई शगफ नहीं और सिर्फ हर एक को मसले सुलाने की बात है, तो ये बात समझने की है कि लिपस्टिक से एज इट इज़ नहीं टूटता, बल्कि हज़रत ईसा के बारे में आता है कि रोज़े की हालत में अपने होंठों पर तेल लगा लेते थे ताकि लोगों का इनका रोज़ेदार होना ना समझे। हम रोजेदार होने का मतलब क्या समझते हैं? आवाजार। किसको मेरी बात समझ आई है? आवाजार क्या होता है? बेजार, पटके हुए, हाय रोजा, हाय रोजा, रोजा रोजा। और कुछ खवातीन तो माथे पे रुमाल भी बांध लेती हैं, सर पे दुपट्टा क्या बांधते हैं, वो पटका सा जो बांध लेते हैं, तेवरी चढ़ी होगी और रोजा रोजा रोजा। देखिए, किसी को पता ना चले कि आप रोजे से, ये बंदे के रब के मामले की बात है। बाद लोग रोजा रख के सारे लोगों के घर वालों की मुश्किल में डालते हैं, आप बल्कि इस नियत से अपने आप को फ्रेश दिखाएं कि कोई बात नहीं है। हाँ, सिर्फ अगर किसी को याद है तो वो खा लेते हैं, कुछ लोग होंठ चबाते रहते हैं, अब उससे अगर अंदर टेस्ट जा रहा है, गलत है, वो तो वैसे ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन एज इट इज सिर्फ इस तरह कुछ मेकअप करने से नहीं टूटता जी। अगली बात क्या है कि रोजे की हालत में मजी खारिज हो या इहतलाम हो तो रोजा टूटता है ना, मकरूह होता है। अब ये टूटता है को ना आप प्लीज अपने बुक्स में ना लिख लें, वरना आप में से कुछ माशाल्लाह ये सोच लेंगे कि टूट जाता है लेकिन मकरूह नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, ना टूटता है ना मकरूह होता है। दलील, हजरत इब्ने अब्बास और हजरत इकरमा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रोजा किसी चीज के जिस्म में दाखिल होने से टूटता है, जिस्म से खारिज होने से नहीं टूटता है। इसे बुखारी ने रिवायत किया, यानी कोई सिक्रीशन, अब हवा खारिज हो सकती है जिस्म से, रेस्ट रूम में इंसान जाता है, इसी तरह जिस्म से कोई सिक्रीशन आती है तो उसे रोजा नहीं टूटता। सर में तेल लगाने, कंघी करने या आंखों में सुरमा लगाने से रोजा मकरूह नहीं होता। हंडिया का जायका चखना, थूक निगलना और मक्खी के हलक में जले जाने से रोजा मकरूह नहीं होता। रोजेदार गर्मी की शिद्दत में कपड़ा पानी में तर करके बदन पर रख सकता है, इससे रोजा मकरूह नहीं होता। इन सब के दलाइल सुन लीजिए। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब तुम में से कोई रोजेदार हो तो उसे तेल कंघी कर लेना चाहिए। क्या पता इससे चलता है कि अपनी हालत ठीक ठाक रखो, बिल्कुल लोगों को बीमार ना दिखो तुम। हाँ, फिर हजरत हसन फरमाते हैं, रोजेदार के लिए नाक में दवा डाल लेने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते के हलक तक ना पहुंचे। नीज रोजेदार सुरमा भी लगा सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, रोजेदार हंडिया या किसी दूसरी चीज का जायका चख ले तो कोई हर्ज नहीं। हजरत अता ने कहा, रोजेदार अपना थूक निगल सकता है। हसन रदी अल्लाह अन्हों ने कहा, अगर मक्खी रोजेदार के हलक में चली जाए तो कोई हर्ज नहीं। इससे लगता है ना कि ऐसे शोशे उठते होंगे, तभी तो इनके जवाब जो है वो दिए जाते थे। अगर किसी पर गुसल फर्ज हो लेकिन देर से उठे तो सहरी खाकर गुसल कर सकता है, अलबत्ता खाने से कबल वुजू कर लेना चाहिए। दलील, अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह से रिवायत है कि मैं और मेरे वालिद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। आयशा ने बयान किया, मैं गवाही देती हूँ रसूलुल्लाह इहतलाम के सबब से नहीं, यानी आपने क्लैरिटी की, वाजे की बात कि इहतलाम के सबब से नहीं बल्कि जिमा के सबब से हालत जुनाबत में सुबह करते और गुसल किए बगैर रोजा रखते, बाद में नमाज फजर से पहले गुसल फरमाते, फिर हम दोनों उम्मे सलमा रदी अल्लाह अनहा के पास आए थे। ये भी आपकी जौजे मोहतरमा थी और उन्होंने भी यही बात कही। इसे बुखारी ने रिवायत किया। दूसरी दलील, हजरत आयशा रजी अल्लाह अनहा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में खाना या सोना चाहते तो पहले नमाज की तरह का वुजू फरमा लेते। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हमारे यहाँ इस मसले में भी बहुत इफरात और तफरीत है। आप देखिए कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि इंसान पे कोई ऐसी हालत गुसल की है और आपके उस वक्त में इतनी गुंजाइश ही नहीं कि आप गुसल कर रहे हैं और आपका फिर खाना पीना रुकता है, वैसे तो सहरी खाए बगैर रोज़ा हो जाता है, अगर अल्लाह ताला हमारे साथ सख्ती करते ना फिर तो कर देते फ़र्ज़ के, भाई ठीक है तुम ये अपने आप को पाक करो और नहीं खाना खाते तो रोज़ा तो हो जाएगा। लेकिन रोज़े ही की आयतों में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करता है, सख्ती का मामला नहीं करता, तो कहा कि उस वक़्त फिर इंसान खा ले और हद यह है कि बस फजर की नमाज से पहले गुसल करके तो फिर नमाज पढ़ेगा। हाँ, इस हालत में नमाज छोड़ देना और सोते ही रहना कि चले अब सुबह उठ के तो शावर ले लेंगे, ये फिर दुरुस्त नहीं होगा, ये तो अल्लाह ताला की एक रुख्सत को मिस यूज़ करने वाली बात है। इसी तरह हमारे यहाँ इस हालत के बारे में एक अजीब कहानी है कि जितने कदम चले जाएँ उतने फरिश्ते बददुआ करते हैं, और मैंने देखा कि लोग इतनी अहमकाना हरकतें करते हैं। एक खातून ने कहा कि फिर मैं बड़े बड़े कदम लेती हूँ कि मेरे कम कदम गिने जाएं। आप महसूस करते हैं कि उम्मत को कितनी ज़रूरत है तालीम देने की, और ये शरीयत किसकी फैलाई हुई है? ये लोगों की फैलाई हुई है जो बैठे सुन उठते बैठते फतवे देते और ऐसी बातें करते रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी की बात है। और जो भी हालत है, अल्लाह के नबी सोते भी थे खाते भी थे। रोजे की हालत में बीवी का बोसा लेना जायज़ है बशर्ते के जज्बात पर काबू हो। دلیل عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا بتاؤ، اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا، کلی میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر کس چیز میں حرج ہے؟ سبحان اللہ، آپ کا انداز دیکھیے، کنایتن، یعنی آپ نے وہ لفظ زبان پہ نہیں پسند کیا، کیونکہ بعض دفعہ تعلیم کے لیے ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں اور شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے دوران کوئی انسان کے ذہن میں غلط بات یا اس کو مذاق اور ہنسی اور اس پہ کوئی کھی 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 کرنا، یہ ادب کے خلاف بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مسئلے کا حل بھی بتا دیا اور وہ بات کا ذکر نہیں کیا، تو پتہ کیا چلا کہ اگر جذبات پہ قابو ہو تو جائز ہے۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے جب اس کی اجازت مانگی تو آپ نے دے دی، لیکن ایک جوان نے جب اس کام کی اجازت مانگی تو آپ نے نہیں دی۔ کوئی دوسرا شخص پاس بیٹھا دونوں باتوں کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ کیا بات ہے، آپ نے ایک کو اجازت دی دوسرے کو نہیں دی؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پہلا شخص بوڑھا تھا؟ یعنی عموماً جذبات پہ قابو ہو سکتا ہے اور بعد میں دوسرے کو نہیں ہوگا، تو یہ طبیعت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر یعنی کوئی بہت زیادہ شدت جو ہے برتنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلی بات، روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے، پچھنے ہے یہ لفظ، اس کے اوپر آپ زبر ڈالیں ورنہ آپ پتہ نہیں اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ دلیل، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب یہ پچھنے کیا ہوتے ہیں؟ علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانے کو پچھنے لگوانا کہتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جسم سے گندا خون نکلوانا۔ عرب اس دور میں دو تین طریقہ علاج ہوتے تھے، مثلا جب فطور ہوتا جیسے خون میں، جیسے ہائی بلڈ پریشر آپ کہہ لیں، یا کسی کو اسکن ڈیزیزز ہوتی تو کٹس لگاتے، جہاں بھی بلڈ وینس ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں گندا خون نکل جاتا، تو بعد میں پھر صاف خون جسم میں رہتا۔ اسی طرح جونکے لگتی تھی، ایک لیچ جس کو بولتے ہیں جانور، وہ جسم میں رکھ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، پتلی سی ہوتی ہے، تو وہ پھر پی پی کے اتنی موٹی ہو جاتی ہے، تو اس کو جیسے سرنج سے خون نکالا جاتا وہ چیز جو ہے وہ اس میں آتی۔ اب یہیں سے ہم بات کریں گے انجیکشن کے بارے میں، کہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ آگے بات یہ الگ سے آ رہی ہے نہیں، لیکن میں اشارتاً کر دیتی ہوں۔ دیکھیے کہ انجیکشن لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک انجیکشن ہوتا ہے دوا کے لیے لگانا، سر میں درد ہے، بخار ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے صرف آپ کے جسم میں میڈیسن جاتی ہیں۔ دوسرا انجیکشن ہوتا ہے جو طاقت کے لیے جاتا ہے، جس میں ڈرپس آ جاتی ہیں، جس میں کوئی ایسی وائٹامنس، کوئی ایسی پروٹین، کوئی چیز جاتی ہے۔ تو دوا کے لیے انجیکشن لگتا ہے تو انشاءاللہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، باقی رہ گیا انرجی کا، طاقت کا، تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کہ روزہ رکھے اور طاقت کا انجیکشن یا ڈرپ لگوا کے بیٹھ جائے، انرجی ادھر سے پوری ہو جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا چیپٹر ہے الاشیاء التی لا یجوز فعلها فی الصوم، وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولا، یعنی بہت زیادہ آسن درجے پہ کہہ کہ یہ ناجائز ہیں۔ دلیل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث آپ میرے ساتھ عربک میں دہرائیں گے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر روزے کے بھی جائز نہیں ہیں، لیکن روزے میں تو بدرجہ اولا، یعنی عام طور پہ ان میں سے کوئی کام کرے گا تو گناہ ہوگا، لیکن روزے کی حالت میں کرے گا تو زیادہ گناہ ہوگا۔ اس کی دوسری دلیل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش بات نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے، अगर कोई दूसरा शख्स रोजेदार से गाली गलौज करे या झगड़े तो रोजेदार कह दे कि भाई मैं रोजे से हूँ, तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दूंगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया। आप इस हदीस में से हाईलाइट करेंगे आखिरी हिस्सा, फल यकुल इन निम रुउ साइमुन। इस हदीस में इस तरह से आसान एक लफ्ज एक और हदीस में कि इन्नी साइमुन। आपने ये जुमले अपने बस नोट करने हैं। और आपसे कोई झगड़ने की कोशिश करता है तो आपने जवाब में अब क्या कहना है, इन्नी साइमतुन। बोले, तीन दफा बोले। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह अगला बंदा आपसे नहीं झगड़ेगा। और ये आदत पड़ गई तो बाद में भी आप यही कहते रहे कि मैंने चुप का रोजा रखा हुआ है। इंशाल्लाह झगड़े जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। रोजे की हालत में बेहुदा फुहश और जहालत के काम या गुफ्तगू करना मना है। दलील, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, रोजा खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि बेहुदा और फुहश कामों से रुकने का नाम है। लिहाजा अगर रोजेदार से कोई गाली गलौज करे या जहालत से पेश आए तो उसे कह देना चाहिए कि मैं रोजे से हूँ, यानी मैं तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। इसे इब्ने खुजैमा ने रिवायत किया। यहाँ के इस हदीस के जो लफ्ज़ है इसको आप हाईलाइट कर लें, इन्नी साइमुन। इन्नी साइमुन ये मुजक्कर है तो औरत के लिए आएगा, तो इन्नी साइमतुन। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रोजे की हालत में किसी को गाली ना दो, अगर कोई दूसरा गाली दे तो उसे कह दो कि मैं रोजे से हूँ, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। इसे इब्ने खुजैमा ने रिवायत किया। यानी गुस्सा आएगा तो पोजीशन बदल लेंगे तो गुस्सा फिर दूर हो जाएगा। जो रोजेदार अपनी शहवत पर काबू न रखता हो उसके लिए बीवी से बगल गिर होना या बोसा लेना जायज नहीं। दलील, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में बोसा लेते और बगल गिर होते, लेकिन वह अपनी शहवत पर सबसे ज्यादा काबू पाने वाले थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। दूसरी दलील, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजे की हालत में बीवी से बगल गिर होने के बारे में सवाल किया, आपने उसे इजाजत दे दी। फिर एक और आदमी आया, इसने वही सवाल किया और आपने उसे मना कर दिया। अबू हुरैरा कहते हैं कि जिसको अल्लाह के नबी ने इजाजत दी वो बूढ़ा था और जिसे आपने मना किया वो जवान था। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। रोजे की हालत में कुल्ली करते वक्त नाक में इस तरह पानी डालना जायज़ नहीं कि हलक तक पहुंचने का खदशा हो। दलील, हजरत लकीत बिन सबरा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वुजू के बारे में मुझे कुछ बताइए। आपने फरमाया, वुजू पूरा करो, उंगलियों के दरमियान खिलाल करो और नाक में अच्छी तरह पानी डालो, लेकिन अगर रोज़ा हो तो फिर ऐसा ना करो। इसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया। जैसे वज़ू करते हुए नाक में पानी डलता है, कान या कुली की जाती है, तो इस सूरत में डाला जा सकता है। बस दोनों ही सूरतों में ये एहतियात रखनी चाहिए कि जो है वो पानी हलक तक ना जाए।